शॉपिंग मॉल, महंगी साड़ियों की दुकान। मॉल के अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने जैसे शामली के चेहरे को छू लिया। बाहर की उमस और भीतर की चमचमाती रोशनी, दोनों के बीच वो एक पल को अजीब सी लगी। फर्श इतना चमकदार था कि अपने ही कदमों की परछाई साफ दिख रही थी। लोग इधर उधर हंसते बोलते, शॉपिंग बैग्स हाथों में लिए, सब कुछ बहुत नॉर्मल था, बस शामली के लिए नहीं। वो विश्वनाथ के साथ चल रही थी, आधा कदम पीछे, आदत से। उसकी नज़र बार बार जमीन पर चली जाती, जैसे कहीं कुछ गिर ना जाए या वो खुद न लड़खड़ा जाए। विश्वनाथ सीधे चल रहा था, बिना जल्दबाजी, बिना रुकावट। उसे पता था कहाँ जाना है। महंगी साड़ियों की दुकान के सामने आकर वो रुका। शीशे के बड़े बड़े दरवाजे भीतर रोशनी में नहाई रैके और रंगों की भरमार, लाल, हरा, फिरोजी, क्रीम, सुनहरा। शामली ने अनायास ही सांस भीतर खींच ली। अंदर चलो, विश्वनाथ ने कहा। उसकी आवाज में आदेश नहीं था, पर आदत थी जिसे टालना मुश्किल था। दुकान के अंदर घुसते ही सेल्समैन आगे बढ़ाया, चेहरे पर वही अभ्यास की हुई मुस्कान। आइए सर, मैडम, किस तरह की साड़ी देखेंगी? शामली जैसे सवाल सुनकर भी सुन नहीं पाई। वो चारों तरफ देख रही थी। इतनी साड़ियां उसने एक साथ कभी नहीं देखी थीं। वो पहले जब शकुंतला के साथ शॉपिंग के लिए आई थी, ये जगह वहां से ज्यादा बड़ी और शानदार थी। दिखाइए, विश्वनाथ ने कहा, बस इतना। सेल्समैन तुरंत हरकत में आ गया। काउंटर पर एक एक कर साड़ियां फैलने लगीं, रेशम की, बनारसी, कांचीवरम, भारी बॉर्डर वाली। शामली का दिल थोड़ा और तेज धड़कने लगा। आप देखिए, विश्वनाथ ने कुर्सी की तरफ इशारा किया, आराम से। वो खुद थोड़ी दूरी पर रखी कुर्सी पर बैठ गया, पास ही, इतना पास कि उसकी मौजूदगी महसूस होती रहे, पर इतना दूर कि वो घबरा न जाए। शामली ने एक साड़ी उठाई, हल्का गुलाबी रंग, सुनहरी बूटियां। उसने उसे अपने कंधे पर रखा, आईने में देखा। ठीक थी, पर कुछ अधूरा सा लगा। उसे नहीं पता था क्या देखना है, क्या चुनना है, बस इतना पता था कि ये सब उसके लिए नया है। विश्वनाथ के साथ होने की वजह से वो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग भी काम नहीं कर पा रहा था। उधर विश्वनाथ का फोन बजा, उसने कॉल उठा ली। हाँ बोलो, हाँ शाम तक हो जाएगा। वो बात कर रहा था, पर उसकी नज़र हर बार शामली पर लौट आती, जैसे अनजाने में, जैसे आदत बन गई हो। शामली ने दूसरी साड़ी उठाई, हल्का नीला, उसे कंधे पर रखा, फिर आईने में देखा, होंठ अपने आप हिले, ठीक है क्या? विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा, फोन पर बात करता रहा, पर उसकी आंखें वहीं थीं, उस नीले कपड़े पर और उस चेहरे पर जो पहली बार अपने लिए कुछ चुनने की कोशिश कर रहा था। तीसरी साड़ी, गहरा हरा, चौड़ा बॉर्डर। शामली ने जैसे ही उसे कंधे पर रखा, उसकी उंगलियां थोड़ी देर रुक गईं। इस बार उसने खुद को आईने में थोड़ा ज्यादा देर तक देखा। ये, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। सेल्समैन तुरंत सतर्क हो गया। बहुत बढ़िया चॉइस है मैडम, ये प्योर सिल्क है, अभी अभी आया है। कितने की है? शामली ने झिझकते हुए पूछा। सेल्समैन ने कीमत बताई। शामली जैसे बिजली सी चौंक गई, उसकी आंखें फैल गईं। इतनी? उसने लगभग फुसफुसा कर कहा, फिर तुरंत बोली, नहीं नहीं, आप ज्यादा बता रहे हैं, ये इतना महंगा नहीं हो सकता। सेल्समैन मुस्कुरा दिया। मैडम क्वालिटी देखिए। नहीं, शामली ने सिर हिलाया, आप लोग ऐसे ही बताते हैं, मैं देखती हूँ, ऐसे ही लोगों को ठगते हैं। उसकी आवाज में अब झिझक कम थी, भरोसा ज्यादा। विश्वनाथ ने फोन से नजर उठाई, पहली बार उसने पूरा ध्यान उस पर लगाया। उसकी भौहें जरा सी ऊपर उठी, फिर उसने फोन कान से हटाया। कोई नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है। शामली ने उसकी तरफ देखा। नहीं, वो तुरंत बोली, आप नहीं जानते, ये लोग ऐसे ही करते हैं, मैं देखती हूँ। और फिर वो दुकानदार की तरफ मुड़ गई। भैया, उसने साड़ी ठीक से तय करते हुए कहा, ये रेट ज्यादा है, इसमें काम उतना नहीं है, आप कम करिए। सेल्समैन ने पेशेवर मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैडम इसमें हाथ का काम है, हाथ का काम तो हर साड़ी में होता है। शामली ने तुरंत काटा, आप ये नहीं बोल सकते। विश्वनाथ चुप रहा, बिल्कुल चुप। उसने फोन जेब में रख लिया। अब उसे कॉल की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी, बस शामली के हिलते होंठ दिख रहे थे और उसके बाल जो एसी की हल्की हवा से बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, और वो आंखें जो अब डर से नहीं तर्क से भरी थीं। दुकानदार एक कीमत बोला। शामली ने सिर हिलाया, नहीं। दुकानदार ने दूसरी कीमत बोली, अभी भी ज्यादा है। वो झुककर बॉर्डर दिखाने लगी, देखिए यहाँ धागा हल्का है और यहाँ फिनिशिंग। विश्वनाथ की नजरें वहीं अटक गईं। उसे लगा वो किसी और को देख रहा है, वही शामली, पर बिल्कुल अलग। अब वो धीमी नहीं थी, अब वो सहमी नहीं थी, अब वो अपने रंग में थी। आसपास के लोग भी एक दो पल को देखने लगे। दुकानदार ने आखिरकार हाथ उठा दिए, ठीक है मैडम, आपके हिसाब से। साड़ी तय हो गई। शामली के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो बड़ी थी, खुली हुई, जैसे कोई बच्चा अपनी पसंद की चीज जीत ले। पैक कर दीजिए, उसने कहा। विश्वनाथ ने बस एक पल को उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे एक हल्की सी स्माइल उसके होंठों पर आ गई, बहुत छोटी, बहुत सच्ची, और मन के अंदर कुछ गहरा सा सुकून। पैकिंग हुई, बिल बना। शामली ने बैग अपने हाथ में लिया, जैसे कोई ट्रॉफी हो। चलें, विश्वनाथ ने कहा। वो सिर हिलाकर उसके साथ चल पड़ी। दुकान के शीशे के बाहर निकलते वक्त शामली ने अनायास ही उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान अभी वहीं थी, हल्की सी। शामली ने नजर फेर ली, पर दिल के अंदर कुछ हल्का हो गया था, और बिना कुछ कहे दोनों आगे बढ़ गए, मॉल की रोशनी में एक साथ।
मॉल के गलियारे में कदम रखते ही श्यामली ने साड़ी वाले बैग को अपने सीने से थोड़ा सटाकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कहीं ये पल भी हाथ से ना फिसल जाए। उसके कदम अब पहले जैसे नहीं थे, हल्के नहीं बल्कि थोड़े आश्वस्त। चलने में एक नई सी लय आ गई थी। वो कभी कभी शीशों में अपना अक्स देख लेती और हर बार नजर तुरंत हटा लेती, पर होंठों के कोने अपने आप ऊपर उठ जाते। विश्वनाथ उसके बराबर चल रहा था। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, पर खामोशी अब भारी नहीं थी, वो सुकून वाली थी जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। चलते चलते श्यामली ने धीमे से कहा, मैं ज्यादा बोल गई थी क्या? विश्वनाथ ने बिना रुके जवाब दिया, नहीं बस एक शब्द, पर उसमें मंजूरी थी। श्यामली ने राहत की सांस ली। अच्छा है, उसने खुद से कहा, इतना धीमे कि शायद वही सुन पाई। फिर अचानक उसे कुछ याद आया, आपको बोर तो नहीं हुआ? इस बार विश्वनाथ रुका, उसकी तरफ देखा। नहीं, उसने फिर कहा, और इस बार उसकी आवाज में हल्की गर्माहट थी। श्यामली ने सिर झुका लिया। दोनों फिर चल पड़े। मॉल की भीड़, रोशनी, आवाजें सब पीछे छोड़ती चली गईं। आगे बस एक एहसास था कि कुछ बदल रहा है, और ये बदलाव डरावना नहीं, अजीब तरफ से ठीक लग रहा था।